बिटकॉइन इज वेरी अंडरवैल्यूड. तो नॉट इवन 1% ऑफ द वर्ल्ड्स मनी इज इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो. मैं जितने भी लोगों से जाता हूँ ना, वो मुझसे पूछते हैं क्या मेटावर्स होगा, तो मैं बोलता हूँ यार वो ट्रेन तो कब की जा चुकी. $1 trillion की इकोनॉमी सिर्फ मेटावर्स बन जाएगी 8 years में.
मेटावर्स होगा ये हमें पता है, क्या है? So, you just told me that you went to IIM. Which IIM?
IIM Bangalore.
IIM Bangalore. Then you went to IIT Delhi. No, first IIT Delhi.
First IIT Delhi.
Then IIM Bangalore.
Yeah.
Then you went to UK.
Yeah.
You worked there and then you joined LSE.
Yes.
London School of Economics. That's number one for economics in the world.
Correct.
So, सारे वर्ल्ड के टॉप कॉलेजेस में यू've been. Now I want to ask you, कि ऐसा क्या सीखा इन टॉप कॉलेजेस में विच यू फील अ नॉर्मल पर्सन जिसको नहीं मिलती इन एंट्री वो नहीं सीख पाता?
वन, ऑब्वियसली यू गेट ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर. दीस कॉलेजेस बिकॉज दे आर वेरी वेल रिनोन्ड, दे आर वेल फंडेड, एलुमना इज देयर, इंफ्रास्ट्रक्चर इज ग्रेट.
तो इंफ्रास्ट्रक्चर से
इंफ्रास्ट्रक्चर से अच्छे क्लासरूम्स, लाइब्रेरी बुक्स फुल, कंप्यूटर्स बहुत सारे हैं.
So every resource is there.
सारे resources हैं.
Okay.
They have a lot of money, so the one of the best teachers come there. So you know, network of people is great. So IIT Delhi, as an example, has a great network of people. You can always contact them. कितना भी senior हो, कितना भी junior हो, you can easily contact them. And I think personally, जो मैंने सीखा is कि अगर एक institute में जाना है, एक अपना target है, तो there has to be a plan. There has to be some discipline. And then when you follow that discipline, success can happen. It is not guaranteed. Luck chahiye. Lekin wo agar success mil jata hai, to aapka ek confidence. Mera confidence boost hua. Ki okay, I followed the plan. I had the discipline. I got the success. So the next time I was even more motivated. The third time I was even more motivated. Right? So, and when I've had a lot of failures in life. And when I had the failures, I was like, okay, it's fine. I know that I have had success and now it's a failure. It's cool. But I know that success can happen. Main wo plan follow karta rahunga.
Okay.
There was not a, at least for me, there was not a self-doubt. Matlab self-doubt hota hai bahut baar. But when you analyze, to ye hota hai ki yaar wo aisa doubt nahi hai. Plan follow karte rahenge, to success aa jayega. Matter of time, matter of learning. Sometimes it's a matter of timing, luck wagera.
So you feel the one of the biggest thing which happened with you was because you followed a plan and got success that you got into these institutes that gave you confidence ki main aage bhi aur aisa bahut cheeze kar sakta.
Bilkul. I definitely think that that's important. To ek saying hoti hai, success begets success.
Okay.
Right? Uske I think two reason hote hai. Ek hota hai ki when you are successful, you sort of get that confidence and belief that, you know, I will be successful. And that energy, that whatever you call it, vibration, that confidence shows to other people. And then other people start betting on you. That's a bet. I'll join your team. I'll work with you. I'll become your partner. I'll give you money. And once that happens, your chances of success increase even further.
Yeah.
So it's a self-fulfilling cycle. Jitna aapka confidence badhega, aur log aayenge. Jitne log aayenge, usse aapke chances of success badh jayenge. To fir aapko lagta, acha, maine confidence badhaya, success aur aa gaya. Fir aapka confidence aur badh gaya. That's why it's this. Success begets success. It's a self-fulfilling prophecy.
Yeah, yeah. So I was also reading, actually I heard it somewhere, not read. I heard somewhere ki jo world ki top institutes hain, jaise Harvard ho gaya, IIM ho gaya, Stanford ho gaya. It's not ki wahan pe jo jata hai wo world ke best talent hai ya wahan pe jo jata hai uska success ekdam proper hai ya nahi hai. It's just ki it gives lot of big people a filter
I agree.
To choose from.
Correct.
Because as you said, like success begets success. A lot of successful people and wealthy people, jo bahut zyada paise wale, unko chahiye ki ab mera next venture kaun lead karega. Ya main nayi cheez karunga to main kiske sath partner karunga. Ya main kis pe paise lagaun. Ab itna bada world hai, there are 7 billion people. Where should I go? Let me go to some place jo already lakhon hazaron logon mein se filter karke baith chuke. So it acts like a filter. It doesn't mean that just because you're there, you'll be successful. It just means ki agar aap wahan pe gaye ho, to aap ek aise filtered crowd mein ho ki jahan se aapko everything can be easier for you.
So, main isko, this is the way I'll answer it. So, there is a concept which is called necessary and sufficient.
Right? Okay.
So, the way to say this is hard work and discipline is necessary for success, but it's not sufficient. What that means is, if you do not work hard, if you do not have the discipline, definitely success won't happen. But the fact that you have worked hard and you have had the discipline, it's a necessary condition. It's not sufficient. That also doesn't mean that you will definitely be successful. So exactly what you said, why it is a good filter is if you worked hard and you had the discipline, you may get into an IIT. So everyone who has gotten into an IIT, my belief is that they have worked hard and they have been disciplined. Yeah. That does not mean that people who did not get into IIT did not work hard and were not disciplined. Because wahan pe, like I said, it's luck. It's that day. What was your mood? What happened in the exam? Maybe one question you picked up, which was wrong, right? Whatever else. That maybe you were sitting too close to the window, too far from the window. You know, whatever. It could be many things.
Yeah.
Maybe in your exam room, the light went off. It was sweaty. Whatever. Tons of stuff, which is why the easier bet becomes. And unfortunately, in this world, people don't have too much time to filter out things, right? So they say, acha, there are already so many people from these colleges. We know that whoever has come to these colleges has worked hard and is disciplined. Yes, a lot of people who have not gone to these colleges also have worked hard, but it'll be a little more tough to assess them. So we'll just go with the easy choice. And I think that's the reason that there is this branding there.
Right? Yeah. Yeah.
And also, I don't think we should underplay the fact that because they get that success, at least for that time in college, there is this confidence that they have on themselves, which does not necessarily mean that they will all become successful. Also, we have seen tons of people, Microsoft, Satya Nadella is a great example. Tons of people, not from IIT, not from the best colleges in the world, extremely successful.
Yeah. Right?
Like I said, it just proves that they have done hard work and discipline. Not necessarily that they will be successful, and not necessarily that if someone is not from these colleges, they haven't done the hard work and discipline.
Okay. So let's say everyone who's watching this, okay, I have two questions for like from an advisory point of view.
Okay.
What are first three tips you want to give to people who are trying to crack IIM or IIT? कि क्या होना चाहिए ये तीन चीजें अगर तुम में है तो योर चांसेस आर हायर टू गेट इनटू IIM.
मैं पहले IIT का बोलूंगा.
ओके.
तो सी वन थिंग आई विल से इज कि डिसिप्लिन चाहिए, बहुत हार्ड वर्क चाहिए, ठीक है. एंड उसके बाद एक वो प्रेशर कम होना चाहिए आपके ऊपर. इट इज लाइक एनीथिंग इन लाइफ, देयर विल बी मेनी सक्सेसेस पीपल विल हैव एंड मेनी फेलियर्स एंड एवरीवन विल हैव दैट. चाहे वो यू नो एवरी वन फ्रॉम इलॉन मस्क टू धीरूभाई अंबानी टू रतन टाटा, दे हैव ऑल बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, बट वी ओनली सी द सक्सेस, बट आई एम श्योर देयर आर टन्स ऑफ फेलियर दैट वी डू नॉट सी, राइट? तो आई लाइक पर्सनली आई रिमेंबर इन माई बैच देयर वर मच स्मार्टर पीपल देन मी, मच मोर हार्ड वर्किंग पीपल देन मी, हु डिड नॉट क्लियर जेई. एंड इफ आई थिंक कि वाई डिडंट दे डू इट, दे पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन देमसेल्व्स. क्योंकि क्या था कि दे वर स्मार्ट, दे वर हार्ड वर्किंग, तो जब वो मॉक टेस्ट देते थे उनकी रैंक बड़ी अच्छी आती थी. तो धीरे धीरे सोसाइटी, क्लास, पेरेंट्स सबके एक्सपेक्टेशन थे कि यार यही आएंगे अच्छे, यही करेंगे. तो एंड माई व्यू इज कि उनके ऊपर इतना प्रेशर ले लिया था ना उन्होंने अपने ऊपर कि वेन इट केम उनकी परफॉर्मेंस इन एक्चुअल, वो था ना कि प्रैक्टिस में तो अच्छा चल रहा था, बट रियल लाइफ में जब वो आए तो वो खराब इसलिए हो गए कि यू नो वो मेंटल बैलेंस एंग्जाइटी, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो गई. तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि उसको एक कॉन्टेक्स्ट में रखो यार कि दिस इज नॉट, दिस इज जस्ट वन एग्जाम. हाँ अच्छा है, क्लियर हो जाएगा, अच्छा है, बेनिफिट्स हैं उसके, नो डाउट, मैं ये नहीं मना करूंगा, बट लाइक एवरीथिंग वो तो हर चीज में होगा. जॉब आएगी फिर ये करोगे, इफ यू आर अ स्टार्टअप फिर आप बोलोगे पहला कस्टमर, पहली ऐप रिलीज, पहली फंडिंग, ऑल ऑफ दैट. यू हैव टू पुट इट इन कॉन्टेक्स्ट कि ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. लॉट ऑफ पीपल टेक एवरी एग्जाम लाइक दिस एज द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड इट अफेक्ट्स योर परफॉर्मेंस. तो हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी / discipline, and take it in context, right? Like in the sense, you don't put too much pressure on yourself.
Okay. And actually, there's one more thing which I remember. I heard Jeff Bezos saying this, ki a lot of people say that we are very successful, but Amazon got built because of the failures.
Correct.
And he said that people only see that Amazon is the number one subscription model in the world. Amazon has this, Amazon has that. They don't see that Amazon has at least 1,000 failed businesses.
Correct. Yeah.
We only got right once.
Correct.
And that is our biggest payer.
Yeah.
So Amazon, I mean, before AWS, their biggest money was coming from a subscription service called Prime.
Yes.
So they were charging people India mein 99 and 999 for a year. 999 for a year. That is how they were making money. And uske se Amazon profitable tha. But uske alawa Amazon ne at least 50 companies kharidi hai. Uske baad at least 1000 experiments kare and they all were flop.
Yeah.
So he said one time we got right, 1000 time we were wrong. So people only see the one thing.
Correct. That's absolutely true. It's like what Thomas Edison said, right? When he was creating the electric bulb. Ki every time I failed, it was one more time that I knew what this is not the hard, to do. Right? So, wo wahi tha, wo finally ban gaya. See, I think this is the problem, right? Ki yahan pe wo judgment aati hai ki ye Thomas Edison ka quote bhi famous isliye hai ki usne finally bana liya. Ab agar usne 50,000 baar bulbs banaya hota aur yahi statement hoti ki now I know 50,000 times not to make an electric bulb, to lege kehta ki bhai aap se ho nahi paata, aap rehne dijiye. So that is another problem.
Right? Yeah.
Ki uska kya kiya jaye ki were we on the wrong path? Did we not have the right skill set? ये बहुत ही post facto analysis है कि जब आ गया result उसके बाद ही आप analysis करके बोलते हो कि हाँ यार very
so good. It's a say like which I believe in my life. It's one thing which I believe is that every time we fail, we want people to hear us out.
Yeah.
We are waiting कि यार मैं किसी को blame कर दूँ या मैं कुछ excuse दूँ या मैं बताऊँ कि मैं ऐसा feel कर रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ. But that is not the right time to share.
Right.
I feel that is the time to try again. Because you can fail for 100 times and then you get right one time. Because the day you get right one time, that will be the day when everybody will want to hear you out. So then you start talking about a failure, then you start talking about everything. Because if you're not right, no matter how interesting your story is, no matter how interesting your idea is, nobody's hearing out.
Absolutely correct. So abhi maine recently movie dekhi, I think Hotstar pe hai, called Kaun Praveen Tambe.
Okay.
Which is on Praveen Tambe, the cricketer.
Yeah.
He actually started his IPL career at, I think, age 42 or 43. So, usme uska coach ka ek dialogue hai ki yaad rakhna, life mein and cricket mein, ek achha over sab kuch palat deta hai. And they show that ki wo ek actually ek tournament mein jata hai, ek over mein, he gets the hat trick. I think that was his debut IPL match, after which he just like rocketed and he kept trying, right? He entered at the age of 42. Where and they show that in the movie, जो हम ये बात करें, they show that in the movie कि सब लोग कह रहे हैं क्या 42 कोई चांस ही नहीं दे रहा, 35 का भी था तेरा कोई चांस नहीं, you're too old, give up on your dream. But वहाँ पे वो था passion उसका, because वो इतना passionate था, it was almost like a wall around him. उसको नहीं फर्क पड़ रहा था कि लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की क्या expectation है. उसने job भी वो की जो cricket में थी. He was like, मुझे job भी ऐसी करनी है कि मैं cricket के पास रहूं, जितना time हो सकता उतना खेलूं. जिन companies में उससे पहले job की, he was actually playing cricket for those companies also. तो ये जो एक passion है ना, ये भी ढूंढना बहुत जरूरी है. एक चीज मैं ये सोचता हूँ कि obviously Indians are doing well all over the world, right? Like US के almost सारी companies, not just tech, even non-tech companies में Indian CEOs हैं. Even in London, finance वगैरह में, lot of Indians very successful. Yeah, yeah.
तो Warren Buffett's successor is also going to be an Indian, right?
Yeah, Ajit Jain. Yeah. So, तो ऐसा क्यों हो रहा है? I think it's the वो जो environment है ना, वो आपको एक फोकस दिला देता है. इट गिव्स यू एन आइडिया कि यार मुझे ना सोसाइटी और इस सब के प्रेशर में नहीं पड़ना, आई नीड टू फाइंड व्हाट आई लव, एंड इफ आई फाइंड व्हाट आई लव, तो जो लोग यहाँ इंडिया में भी हैं वो भी उतने टैलेंटेड हैं. वो ऐसा नहीं है कि वो जो बाहर जा रहे हैं, मैं भी बाहर गया, मैं यहाँ वापस हूँ, कि हम उनमें से कोई ज़्यादा टैलेंटेड कम टैलेंटेड, टैलेंट उतना ही है. लेकिन वो जो एक फोकस और पैशन आ जाता है ना बाहर जाके समझना, तो आप डबल ट्रिपल एनर्जी से काम करते हो. और जैसे ये प्रवीण तांबे की स्टोरी है, फिर फेलियर भी आता है ना, तो ये लाइक कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो काम वो कर रहा हूँ जो दिन भर मुझे मजा आता है. इट्स द सेम थिंग आई से अबाउट द एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, कि चलेगा ग्रेट एक्सेलेंट, नहीं चलेगा फिर भी आई एम ओके, रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि आई वाज डूइंग समथिंग आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट.
या आई थिंक आई हैव अ स्लाइटली डिफरेंट ओपिनियन, बट एट द एंड ऑफ द डे द आंसर और द मीनिंग इज सेम. इज आई जेन्युइनली फील दैट पैशन इज ओवररेटेड. And this is why I say this. Everybody is trying to think, यार मेरे को मेरा passion नहीं मिल रहा, मुझे ना कुछ passionate करना है, मेरे को दुनिया लाना, मेरे को बस वो मजा नहीं आ रहा. But passion कभी मिलेगा ही नहीं. You have to build your passion. What is ultimately passion? If you actually look at people, you got influenced by someone, you got influenced by something, you tried your heart at it, you tried your luck at it, you got little success, and आसपास के लोगों ने उसके बारे में appreciate करना start कर दिया, तो तुमने और किया, फिर लोगों ने और appreciate किया, तो तुम फिर वो करते चले गए, now you've surrounded yourself around this wall, कि यार यही सब चीज मुझे पसंद है, and then now you're so involved in it that you're calling it a passion. So whatever your passion is, it's like you figure out 10 things, which is that one thing where you stick around is what your passion is. So it's what I believe is, ultimately, you're never going to find your passion. You always have to build it. And you build it by your experiences and the things you're interested in. Log wait kar rahe hote hain ki yaar kuch to mere ko mile. कुछ तो ऐसा हो एंड दे डू दिस टेस्ट ऑनलाइन कि मेरा पैशन क्या है दे ट्राई टू फाइंड आउट ऑल दैट इज बुलशिट
आई बेग टू डिफर हियर
ओके
मैं ये बोलूंगा कि पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड एंड पैशन होता है बट
इन ऑर्डर टू बिल्ड इट आई थिंक यू कांट फाइंड पैशन यू कैन बिल्ड पैशन
ओके तो मैं इस पे भी आता
हूँ
बट व्हाट आई विल से इज कि ये नहीं होना चाहिए कि और टिल आई डोंट फाइंड माय पैशन मैं कुछ करूंगा ही नहीं बिकॉज द ओनली वे यू विल डिस्कवर द पैशन सो आई विल से कि व्हाट यू आर सेइंग इज पैशन इज एन इन्वेंशन आई एम सेइंग पैशन इज अ डिस्कवरी सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि पैशन है वो मेरा पैशन अलग है आपका अलग है यू नो एवरीवन सबका पैशन अलग है जो भी ये सुन रहे हैं सबका अलग अलग है आपको वो डिस्कवर करना है कि आपका वो पैशन क्या है आप कह रहे हो कि नहीं यार पैशन डिस्कवर नहीं होता पैशन तो इन्वेंट करना होता है मतलब हम लगे रहेंगे उस पर और जिस चीज में सक्सेस आना शुरू हुआ हमने इन्वेंट कर लिया अपना पैशन वो मैं अपने एटलीस्ट अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि वाई इज पैशन इज अ डिस्कवरी तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ ट्रेडिंग हेज फंड्स आई डिड रियली वेल आई बिकेम द यंगेस्ट पार्टनर एट स्टॉक इन्वेस्टमेंट व्हिच वाज द सेवंथ लार्जेस्ट हेज फंड इन द वर्ल्ड आई रियली लाइक माई जॉब इट्स वेरी चैलेंजिंग वेरी इंटरेस्टिंग एक्सेट्रा मैं फाइनली बोलूंगा कि यू नो कहीं पे वो पैशन मिसिंग था इसलिए मैंने उसको 10+ years किया विच इज ओके अ लॉन्ग टाइम बट उसके बाद जब मैं यहाँ वापस इंडिया आया सबने बोला कि यार ये दोबारा कर लो मेरा कभी एंथ ही नहीं हुआ कि मैं जाके दोबारा करूँ एंड आई काइंड ऑफ थिंक लाइक यार बिकॉज पजल सॉल्विंग कम्स इज समथिंग आई एंजॉय अ लॉट आई वॉज डूइंग इट बट वो जो एक पैशन था ना वो एक्स्ट्रा एक लिटिल एक्स्ट्रा कुछ मिसिंग था जिसकी वजह से आई डिड नॉट कीप डूइंग दैट ऑलवेज अगर वो मेरा पैशन होता मैंने इतना टाइम किया आई हैड द स्किल आई गॉट द सक्सेस So it would have been very natural for me to go back and say, yeah, man, why would I even attempt to do anything else?
True.
Right? So I would say ki, at least in my experience, I had invented that my passion was trading. Actually, then I later discovered that my passion is creating. And even as a kid, and now I go back, ab main entrepreneurial journey mein hoon. Now Zionverse company is doing well, but Totality is a 5-year-old company, right?
Yeah.
We have seen probably a lot more failures than we have seen the recent success that we are getting. But in this entire part, right, I have never for a moment had a regret ki yaar main kya kar raha hu. This does not mean ki there haven't been down moments. This does not mean that there haven't been moments ki boss, hum kar bhi sakte hain ki nahin. But when you sit down, there haven't been a moment ki yaar kya kar liya. I wish maine ye nahi kiya hota. Agar wo ek question jo hota hai na, and the way I will say ki mera benchmark kya tha to say ki ye discover ho gaya mera passion. आज भी इवन आफ्टर 5 years आई फील कि एवरी डे व्हेन आई वेक अप आई एम प्रॉब्ली इवन मोर एक्साइटेड मैं जैसे उठता हूँ ना इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि अभी तो खैर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो ऑफिस इज यू नो 100 नॉट इवन 20 स्टेप्स अवे बट जब ऑफिस भी था या आज भी है तो आई गेट अप आई एम लाइक ऑलवेज इन हरी कि यार आई हैव टू रन टू माई वर्क एंड दैट यू है ना कि आई हैव टू रन टू माई वर्क कम्स बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड कि यार आज ये करेंगे आज ये होगा आज ये बात करेंगे कम्युनिटी से बात करेंगे ये प्रोडक्ट होगा टीम में ये करेंगे साथ में ये बनाएंगे वगैरह एंड कभी वहां पे वो जैसे व्हेन आई वाज गिविंग जेई लाइक सी आई वाजंट पैशनेट अबाउट जेई एग्जाम और इंजीनियरिंग राइट आई वुड इनफैक्ट से कि जब मैं अंदर गया तो आई वाज लाइक यार इंजीनियर बनना है आफ्टर माई 4 years ऑफ IIT आई डिसाइडेड कि कुछ भी बनना है इंजीनियरिंग तो नहीं करना राइट कोई भी करियर ले लेंगे इंजीनियरिंग का करियर नहीं लेंगे And that happens with a lot of people. Even a lot of people I talk to now who are going to at least engineering colleges. मैं उन्हीं से मिलता हूँ. मुझे बहुत ज़्यादा और लोगों का नहीं पता. But a lot of people say कि I was very passionate about say automotive engineering. मैं college का नाम नहीं लूँगा. वो बताते हैं there is one college which is really renowned for automotive engineering. वो कहते हैं that college kicked the interest out of me, right? तो फिर आपको पता चलता है कि oh, you know, आप passion से गए थे, आप invent करने गए थे, but वो हुआ नहीं. एंड एक्चुअली वो कहीं पे स्टम्बल हो गया बट जैसे मैं अगेन ये कौन प्रवीण तांबे की बात करूंगा कि वो इतना पैशनेट था उसने कहा जॉब चाहिए जॉब ऐसे करूंगा जिसमें वो मुझे क्रिकेट खेलने दे कंपनी के लिए फाइनली उसको वो भी नहीं मिली तो उसने जाके DY पाटिल स्टेडियम में ही जॉब कर ली सो दैट ही इज अराउंड क्रिकेट द होल टाइम वहां पे वो कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर था लेकिन वहां पे चाहे जॉब क्रिकेट डायरेक्ट नहीं है वो क्रिकेट नहीं खेल रहा बट क्रिकेट के अराउंड है तो आई हैव सीन सो मेनी पीपल हु वाज लाइक कि आई लव मूवीज आई लव मूवी बिजनेस हाँ वो एक्टर नहीं है बट दे विल बी लाइक यार आई जस्ट बी अराउंड इट क्योंकि वो मेरा पैशन है तो फॉर मी आई वुड से कि पैशन इज अ डिस्कवरेबिलिटी इट्स नॉट इन्वेंशन
प्रोबेबली आई स्टिल हैव टू डिस्कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स सो
राइट
आई वुड टेक योर वर्ड बिकॉज़ यू हैव मच मोर एक्सपीरियंस इन लॉट ऑफ स्टफ ओके I want to take a quick question and then move to like an interesting part. The quick question is, you have been to all the top colleges in the world. IIT, IIM, LSE, all top notches. Do you only hire from these colleges? Or do you not?
So, no.
Is your first preference ki meko any college se koi mile?
Absolutely not. So, I'll tell you something I've discovered. So, isme main again do ya teen cheeze bolta hun. One thing I've discovered is that attitude is a lot more important than aptitude. Aap kaise learn karte ho, kitna hard work karte ho, kitne enthusiastic ho apne kaam ke liye, is a lot more than ki aapka aaj current skill set ya hard skill set kya hai. To agar hum coding ki bhi baat kar le, ki agar hum kisi ko bole ki yaar ye, you know, write this software program, get this, write this algorithm, unhone kar liya nahi kiya, lekin agar unka ek attitude hame dikh jata hai ki yaar ye soch sahi rahe hain, mehnat sahi kar rahe hain, to wo seekh jayenge. एंड चाहे आपको आज कितना भी आता हो, आप आज अगर आपको लगता है कि आज आप आइंस्टाइन भी हो, ये एक टीम वर्क का इशू है, राइट? एज इन एक आइंस्टाइन को हायर करने से कंपनी नहीं खड़ी हो सकती, नहीं हो सकती. तो इट डजेंट मैटर, वी आर नॉट लुकिंग टू जस्ट हायर आइंस्टाइन. आइंस्टाइन आ जाए, बट इफ दे आर विलिंग टू डू टीम वर्क, अमेजिंग, राइट? इसका मैं ये नहीं कह रहा कि हार्ड वर्क, मतलब हार्ड स्किल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बट प्रायोरिटी इज द एटीट्यूड. तो और दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा कि वी रियली हायर फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकर्स. उसका क्या मतलब कि अगर इफ आई गिव यू अ प्रॉब्लम, उसका ये नहीं है कि यार वो हमने कभी सॉल्व नहीं किया, हमें नहीं पता. जैसे ये है कि इसमें मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, आई एम आउट, तो वो वाला आंसर नहीं होना चाहिए.
इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है,
इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, आई एम आउट वाला नहीं होना चाहिए. इसमें होना चाहिए ओके. अब अगर जैसे मुझे ये लगता है कि अगर कोई मुझे आके मेडिकल की भी प्रॉब्लम दे देगा, तो यार आंसर ऑब्वियसली मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने नहीं पढ़ा, ना वो मेरा एक्सपीरियंस है. बट मैं बोलूंगा ओके, इसका ये मतलब नहीं कि मैं अटेम्प्ट नहीं कर सकता. तो आई विल ट्राई इट, आई विल से अच्छा इसका क्या फ्रेमवर्क होगा, क्या ये फ्रेमवर्क अप्लाई करते हो या ये फ्रेमवर्क अप्लाई करते हो, क्या क्या डेटा मुझे चाहिए, हो सकता है कि वो डेटा मुझे मिले, उस डेटा का अगर मुझे पता करना है कि उसका क्या कंक्लूजन, मैं किससे जाके पूछ सकता हूँ. तो ये एक हेनरी फोर्ड का बहुत अच्छा एक हिस्टोरिकल फैक्ट है. तो हेनरी फोर्ड ऑब्वियसली क्रिएटेड फोर्ड द कंपनी, द फर्स्ट वन जिसने असेंबली लाइन प्रोडक्शन की थी, तो बिकेम रियली रियली फेमस. उसके बाद a lot of the industrial revolution was copying that model, right? And Henry Ford was not that educated. So media used to write a lot against him. कि अरे आप तो educated नहीं हो, आप कैसे बना लोगे ये वो ये वो. तो उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आंसर बोला कि आ जाओ, जिसको जो सवाल पूछना है ना पूछ लो, मैं सबके जवाब दे दूंगा, एंड दैट इज माई चैलेंज टू यू. तो उन्होंने बुलाया और उसने कॉन्फ्रेंस में हर एरिया के एक्सपर्ट को बैठा दिया. तो मीडिया कोई क्वेश्चन पूछता, वो कहता ये जवाब देगा. वो कोई और कोई क्वेश्चन पूछता, वो कहता है ये वाला जवाब देगा. वो कहते हैं ये क्या है, आप तो बता ही नहीं रहे, आप तो खुद तो जवाब बता ही नहीं रहे. कहते हैं यही तो मेरा स्किल है, मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं पता, और मुझे ये भी पता है कि किसको और क्या पता है. तो मुझे सब कुछ पता होने की जरूरत नहीं है, बट मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं पता, और अगर उसको पता है तो मुझसे काम करा लूंगा. दैट इज दैट एटीट्यूड एंड फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग.
यू हैव बीन इन द फाइनेंस वर्ल्ड, ओके. You have then like led in a hedge fund. You've been done all of that, trader, hedging, all of that. Now you're in the metaverse. You're in the world of Web3. यहाँ पर भी पैसे का और बहुत ज़्यादा game है. So ऐसा क्या framework है which people should use in order to make money? अगर किसी को पैसे कमाने हैं तो क्या framework होना चाहिए, क्या first principle thinking होता है कि ये चीज़ मैं अगर step 1, 2, 3 ये करूँगा, मैं किसी भी business में apply करूँ, किसी भी category में apply करूँ, तो मैं पैसा कमा सकता हूँ.
Okay. तो इसमें भी दो अलग अलग framework से आप जा सकते हो,
ठीक है.
मैं एक पहला framework पे आता हूँ जो एक expert level का framework होता है. वो ये होता है, in the finance world, सबसे पहला question you always ask is, कि वॉट डू आई नो दैट अदर्स डोंट नो. मुझे ऐसा क्या पता जो औरों को नहीं पता. वाई डू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन इज कि यार जैसे स्टॉक्स की बहुत बात होती है आजकल इंडिया में, मैं देखता हूँ ट्विटर पे भी बहुत होती है, यूट्यूब पे भी. लोग कहते हैं ITC को यहाँ खरीद लो, वो खरीद लो, वो सिगरेट बनाते हैं, बनाते हैं. तो सोचना ये चाहिए कि यार अगर ये जो आप बता रहे हो वो सबको पता है, तो स्टॉक की वैल्यू ऑलरेडी बढ़ जानी चाहिए थी. और अगर सबको वो पता ही है, तो वो एक कॉन्सेप्ट है कि एफिशिएंट मार्केट है, कि स्टॉक उतने वैल्यू पे होगा, सबको ही पता है तो वो ऑलरेडी प्राइस में है, तो ऊपर क्यों जाएगा स्टॉक. तो या तो आप ऐसे एक्सपर्ट हो कि आपको कुछ पता होना चाहिए जो औरों को नहीं पता, राइट? और वो आती है कुछ एक्सपर्टीज से. तो वो आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, आपको कुछ ज़्यादा एनालिसिस पता है, आप सिगरेट इंडस्ट्री के बारे में कुछ अलग जानते हो, FMCG इंडस्ट्री के बारे में कुछ अलग जानते हो, कंपनी के ऑपरेशन के बारे में कुछ अलग जानते हो, स्ट्रैटेजी के बारे में जानते हो जो और लोग नहीं जानते. ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे हेज फंड्स वगैरह, जैसे हम लोग जिनका फुल टाइम काम है वो ये करते थे, वॉरेन बफेट जिनका फुल टाइम इन्वेस्टिंग का काम है वो ये करते हैं,
इन्फॉर्मेशन इज किंग,
कि इन्फॉर्मेशन इज किंग, हम एनालाइज करेंगे दिन भर, हम एनालिसिस करते रहते हैं, राइट. तो इसमें मैं ये बोलता हूँ कि यू नो, जैसे स्टॉक ट्रेडिंग बढ़ रही है काफी ज्यादा, एंड लॉट ऑफ पीपल से कि यार हमने तो ये स्टॉक खरीद लिया, आंसर की ये क्यों खरीदा, इसका प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ, प्रोडक्ट अच्छा है तो मुझे लगता है कंपनी में खरीद लूंगा. अरे यार, अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो सबको पता होगा कि प्रोडक्ट अच्छा है, सेल्स अच्छी होगी अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो आपके खरीदने से क्या हो जाएगा, राइट. एंड आपको ये भी सोचना चाहिए कि जो हेज फंड्स वगैरह में बैठे हैं, जो 16 घंटे इस पे काम कर रहे हैं दिन भर, उनसे आपकी क्या बेटर एक्सपर्टीज है या नहीं. तो एक तो ये फ्रेमवर्क है कि व्हाट डू आई नो दैट अदर्स डोंट नो. सेकंड एक्सपर्टीज है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड. तो देर आर, ये एक अलग प्रिंसिपल होता है कि जिसे बोलते हैं ना कि स्विमर कितना भी स्ट्रांग हो, इफ यू आर स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्विम. एंड इफ यू आर इवन इफ यू आर अ वीक स्विमर, इफ यू स्विम विद द टाइड यू विल गो वेरी क्विकली. चाहे हम सेलिंग भी करें तो हवा की डायरेक्शन से ही के साथ ही जाते हो आप, यू नेवर ट्राई टू गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो द अदर आंसर कुड बी कि यू बेट ऑन अ ट्रेंड. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज समथिंग आई लव, कि राकेश झुंझुनवाला सेज कि यार ये इंडिया का टाइम है, इंडिया बढ़ने ही वाला है. वॉरेन बफेट सेज कि यार इकोनॉमिक प्रोग्रेस, US की इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे ही बेट्स, एंड ही ऑलवेज एडवाइजेस पीपल कि गो डू अ सिप इन इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स ETFs. यू डू नॉट हैव द एक्सपर्टीज कि आप कौन सा स्टॉक पिक करोगे. अगर आपके बेट है कि ट्रेंड है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस इंडिया में है, सेंसेक्स, निफ्टी, कोई भी ETF में आप इन्वेस्टमेंट करते जाओ, डोंट ट्राई टू गेट एन एक्सपर्टीज कि कौन सा स्टॉक वगैरह पिक कर रहे. अगर आपको ये लगता है सिमिलरली वेब थ्री में कि यार आई थिंक दिस एरिया इज गोइंग टू ग्रो, मुझे लगता है मेटावर्स ग्रो करेगा, तो कुछ कुछ मेटावर्स प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर लो. अगर आपको ये लगता है कि हाँ यार लेयर टू सोल्यूशन बढ़ेंगे, तो कुछ कुछ लेयर टू में इन्वेस्ट कर लो. अनलेस आपको ये लगता है कि हाँ मुझे सारा पैसा इथेरियम में डालना है, या सारा पैसा मैटिक में डालना है, सारा पैसा जायनवर्स में डालना है, तो आपकी, अगर आपको इतनी कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेनी है तो थोड़ी ट्रेंड भी पता होना चाहिए और एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए, राइट. तो ये दो चीजें होंगी. अब ये डिपेंडिंग ऑन कि कौन कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, किसका क्या स्किल सेट है, फॉर मेजोरिटी ऑफ पीपल दे शुड एनालाइज कि ट्रेंड क्या है, क्या चल रहा है, एंड देन जस्ट गो विद द ट्रेंड एंड प्लेस थोड़ी डाइवर्सिफाइड बेट्स. एंड फॉर अ फ्यू पीपल जिनके पास वो स्किल है, टाइम है, फ्रेंड्स की नॉलेज है, अपनी नॉलेज है, वो एक्सपर्टीज वाली बेट ले. ये मेरा सजेशन होगा.
सो मेक सेंस. ओके, इसका मेरा काउंटर क्वेश्चन है. एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लो मेटावर्स. अब फेसबुक जैसी कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि हम लोग मेटावर्स में बहुत रेलेवेंट बनने वाले हैं, फ्यूचर इज मेटावर्स. अब सबको पता चल गया ये ट्रेंड है. लेकिन अगर हर कोई, हर रूम में बैठा इंसान या हर कोई जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, सब ये समझ के इन्वेस्ट करने लग गए मेटावर्स में, एवरीबडी बिलीव दैट दिस इज गोना बी द बिग थिंग, डू यू थिंक देन इट विल बिकम अ बिग थिंग? क्योंकि सब थोड़ी सही हो सकते हैं, और अगर सब सही हो गए तो फिर इतना रूम ही नहीं बचेगा सब लोगों के लिए पैसा कमाने के लिए, तो लोग ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे.
गुड पॉइंट. तो लेट्स, पहले मेटावर्स से पहले मैं एक क्रिप्टो का एग्जांपल लेता हूँ. क्रिप्टो का जो पूरा आइडिया है वो अ डेकेड ओल्ड है. मेटावर्स का आइडिया भी एक्चुअली मोर देन अ डेकेड ओल्ड है, बट एटलीस्ट जो उसकी एग्जीक्यूशन है वो अब स्टार्ट हुई है.
अभी न्यू है, लेट्स सी, फॉर अस इट्स न्यू,
वेरी वेरी न्यू है. तो क्रिप्टो का जो है कि बिटकॉइन, इथेरियम, दे हैव बीन अराउंड फॉर अ डेकेड. उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो टोटल है इज आई थिंक स्टिल अराउंड 2 to 2.5 trillion. ठीक है, अगर हम US की ही स्टॉक मार्केट ले लें, खाली US के जो NASDAQ वगैरह वगैरह, दे'ल बी 50-100 trillion, राइट. तो अगर मैं ये देखूं, एवरीवन, हम लोग क्योंकि क्रिप्टो वर्ल्ड में है, तो हमें लगता है यार सब तो क्रिप्टो में पैसा डाल रखा है, तो बचा कौन है. बट अगर हम ये देखें कि उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, तो सबका पैसा आ ही नहीं सकता उसमें. तो नॉट इवन 1% ऑफ द वर्ल्ड मनी इज इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो, नॉट इवन दैट, राइट. तो इसका मतलब यह है कि डेटा इज टेलिंग अस कि सब इन्वेस्टेड नहीं है, वो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि उतना मार्केट कैप ही नहीं है, तो वो हो ही नहीं सकता प्योर स्टेटिस्टिक्स से. वो क्यों नहीं है, क्योंकि एक्चुअली वर्ल्ड में इंडिविजुअल्स, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इंस्टीट्यूशंस के पास है. जो पेंशन फंड्स हैं, इंश्योरेंस फंड्स हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनके पास पैसा है. जो हम म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, उन लोगों के पास पैसा है, वो अभी क्रिप्टो में नहीं आए. तो अब आप इमेजिन करो कि अगर उन्होंने 1, 2, 3, 5% भी पैसा डाल दिया, तो इसी में अगर जो एनालिसिस है बिटकॉइन का, एक मेथडोलॉजी है उसको प्राइस को करने की, स्टॉक फ्लो कि कितना उस हिसाब से बढ़ेगा, उस हिसाब से तो बिटकॉइन इज वेरी अंडरवैल्यूड. मतलब आई एम नॉट, सबके अपने अपने फ्रेमवर्क हैं, ये लोग इसको ये लेके नहीं जाए वो बिटकॉइन इज अंडरवैल्यूड. आई पर्सनली बिलीव इट इज अंडरवैल्यूड, आई एम लॉन्ग बिटकॉइन, बट उस फ्रेमवर्क से भी, स्टॉक फ्लो से, बिटकॉइन इज वेरी वेरी अंडरवैल्यूड. कि अगर लोगों का पैसा मूव हो गया इन क्रिप्टो तो वैल्यू इज गोना शूट अप लाइक अ लॉट, राइट? तो लोग नहीं है अभी इसमें. अभी क्या है कि न्यू टेक्नोलॉजी है, फन है, इंटरेस्टिंग है, तो मीडिया अटेंशन बहुत ज्यादा है. अब वो क्योंकि मीडिया अटेंशन बहुत ज्यादा है तो वो ऐसा लग रहा है कि भाई सब कुछ ही क्रिप्टो है, राइट? और कुछ है नहीं. प्लस हम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, आप भी वेब थ्री और क्रिप्टो बहुत देख रहे हो, तो हमें ये लगता है कि मैं इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल दूंगा, आईफोन, राइट? आईफोन की पेनिट्रेशन क्या लगती है आपको कि इंडिया में क्या है?
इन टर्म्स ऑफ फोन मार्केट,
हाँ,
10%, 15%,
इट्स आई थिंक लेस देन 3% एंड इट्स डिक्रीजिंग. दैट इज इट, राइट? बट आपने तो खैर 10-15 बोला, वो तो बहुत अच्छा गैस है. जब मुझसे लोगों ने पूछा, मैं यार ऑलमोस्ट सबके पास है, बट अगर तुम सवाल पूछ रहे हो तो मैं कह देता हूँ कि शायद 50% होगी, क्योंकि मैं तो जितने लोगों को देखता हूँ सबके पास आईफोन है, राइट? तो जब मुझे पता चला कि 3%, मैंने कहा ओ माई गॉड ये कैसे. अब वो यही है, दिस इज द बायस दैट वी गेट, कि जितना हमारे को सैम्पल डेटा दिखता है, जो हमारे फ्रेंड्स दिखे जिनके साथ हम गए, उनमें तो हमें लगा आईफोन ही है, हमने पूरा डेटा देखा नहीं. इसका मैं एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ. यूएस में जो ऑनलाइन सेल्स है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, किसी ने मुझसे पूछा कि यार वो कितनी होगी परसेंटेज ऑफ ऑनलाइन सेल्स एज अ, तो मैंने कहा यूएस, अब कोरोना से पहले यूएस, उसमें तो सभी करते होंगे शॉप ऑनलाइन, मतलब मेरे तो सारे फ्रेंड्स हैं. अब इंडिया में सब कर रहे हैं,
मैं ऑनलाइन करता हूं तो यूएस में तो,
यूएस में तो सभी कर, मैंने कहा कौन जाता होगा वहां पे, मैंने कहा 60-70% होगी शायद. एक्चुअली द नंबर, व्हेन आई लुक्ड एट द डेटा प्री कोरोना, दैट नंबर वाज जस्ट 11%. Amazon जो इतनी बड़ी कंपनी है, Amazon इन द US हैज 50% ऑफ द ऑनलाइन सेल्स मार्केट, राइट? दिस वाज प्री कोरोना. कोरोना के बाद जब लॉकडाउन भी हो गए तो ये परसेंटेज नंबर 27% गया था खाली, और अब वो अराउंड 25% है. आज भी जब हमें ये लगता है कि शायद ही कोई, कि शायद किराना शॉप पे कोई जाता होगा, वो भी ये ये जेप्टो वेप्टो ने उसका भी खत्म कर दिया कि 10 मिनट में ही सब कुछ आ जाएगा, तो किराना स्टोर भी क्यों जाना, लगता है ऐसे कि उसके अलावा कौन जाता होगा इंडिया में. यूएस में आज भी 75% है. तो क्या होता है कि ये जो डेटा है ना, हमें ये लगता है कि जितना हम देख रहे हैं उतना ही डेटा है. तो दैट इज द अदर थिंग जो हमें ये लग रहा है कि जो हम लोग क्रिप्टो और वेब थ्री में है, इसलिए ये हमें पूरा का पूरा डेटा देखना पड़ेगा टू मेक इट अ फैक्चुअल एनालिसिस. अभी क्या, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ इस मार्केट में. अगर आप ये देखिए जेपी मॉर्गन 3 साल पहले, जेमी डायमंड जो उनके हेड हैं और जेपी मॉर्गन, वो दोनों कहते थे बेकार है, ना बिटकॉइन ना वेब थ्री, कुछ नहीं होने वाला, फैड है. फिर जेपी मॉर्गन ने रिपोर्ट्स छापनी शुरू कर दी, वेब थ्री बिटकॉइन ये वो. जेमी डायमंड ने बोलना शुरू कर दिया कि होगा, मुझे तो बेकार लगता है, लेकिन हम एज अ बैंक तो इसमें काम करेंगे. अब रिसेंटली जेपी मॉर्गन ने रिपोर्ट निकाली कि मेटावर्स इज गोइंग टू बी अ $1 trillion बिजनेस By 2030, which is 8 years away. अभी आप और मैं जितने भी लोगों से जाता हूँ ना, वो मुझसे पूछते हैं क्या मेटावर्स होगा, तो मैं ये बोलता हूँ यार वो ट्रेन तो कब की जा चुकी. फेसबुक जो दुनिया की बिगेस्ट वेब टू कंपनी है, उसने अपना नाम बदल दिया, वो ये कह रहा है कि हमारी जी पूरी बेटा है, उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है, राइट? इज अ वेरी स्मार्ट गाय, और वहां पे ही वो अकेला बेट नहीं ले रहा होगा ना, उसके पास भी बहुत स्मार्ट टीम होगी, इन्वेस्टर्स होंगे जो समझ रहे होंगे. जेपी मॉर्गन वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट बैंक, पूरा अपना एनालिसिस बदल दिया उन्होंने, और अब वो ये कह रहे हैं कि $1 trillion की इकोनॉमी सिर्फ मेटावर्स बन जाएगी 8 years में. और अभी भी हम इंडिया में ये बातें कर रहे हैं कि क्या होगा क्रिप्टो, क्या होगा मेटावर्स का. बात ये नहीं कि क्या होगा, अब सवाल ये है कि कितना बड़ा होगा. दैट इज दैट, वो क्वेश्चन तो कब का खत्म हो चुका.
होगा तो, कौन सा होगा और कितना बड़ा होगा इज द क्वेश्चन.
बिल्कुल, होगा तो है ही, वो तो गिवन है. वो जो ऐसा आपने इंस्टाग्राम का एग्जांपल दिया ना अपने लिए, मैं उसी एग्जांपल पे अभी ये बोलूंगा कि ये तो ट्रेंड है, हो गया, ये तो बड़ा बनेगा ही. जब आपने इंस्टाग्राम पे बैठ ली होगी, आपको भी नहीं पता होगा कि कितना बड़ा बनेगा, राइट?
इतना तो नहीं सोचा था जो आज हो गया.
करेक्ट, बस यही है, मैं भी यही बोलूंगा कि मुझे नहीं पता कि वो कितना बड़ा बनेगा, बट ट्रेंड तो है ही है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट द ट्रेंड.
मेक सेंस. नाउ दैट यू हैव रेड अ लॉट ऑफ डेटा, ओके, startups ke bare mein, your different industries, you read a lot, you have an understanding. What do you feel right now in India? Aisi kaun si teen char cheez hai jo jisme bahut opportunities hai aur logo ko lag raha hai ki isme opportunity khatam ho gayi ya unko lag raha hai ki hoga hi nahi kabhi. Metaverse is definitely one, of course. Because you are there, you're operating. Metaverse to bahut bada hone wala hai, because you just talked about it, that it's going to be $1 trillion industry. And I don't think India mein to zyada koi hardcore relevant startups bhi hai at present who are actually doing very good.
Nahi, ek hai, I think Totality Corp ke naam se jo Zanverse bana rahi hai. बहुत रेलेवेंट और बहुत बड़ी स्टार्टअप.
नो गो अहेड, टेल मी, सो व्हाट ऑल इंडस्ट्रीज आर देयर जिसमें लगता है बहुत अपॉर्चुनिटी.
अगर देखो, ऑब्वियसली आई एम बायस्ड बिकॉज़ मैं तो मेटावर्स और वेब 3 बोलूंगा, बट अदरवाइज अगर हम एक और स्टेप बैक लें, जैसे जो राकेश झुनझुनवाला का व्यू है, आई ऑल्सो अग्री विद दैट व्यू. अगर हम इंडिया का वो देखें, वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिसकी वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ रही है. राइट, चाइना की वर्किंग पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, जापान की तो पॉपुलेशन ही डिक्रीज हो रही है, जर्मनी कनाडा में अगर आप इमिग्रेशन हटा दो तो उनकी भी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है. राइट, वहां पे इसलिए वो लोग अभी भी इमिग्रेशन को इतना सपोर्ट करते ही जा रहे हैं, करते जा रहे हैं. तो एक सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि आप सिर्फ पॉपुलेशन से ग्रोथ लाना सबसे आसान है. राइट, अगर 100 लोग काम कर रहे थे, कल 200 लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, GDP डबल हो गया, और भी डबल होगा, क्योंकि वो लोग एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ और ट्रांजैक्शंस करते जाएंगे. ग्रोथ होगी तो आप पैसा भी ज्यादा कमाओगे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होगी, एक्सेट्रा. तो इंडिया में वो ग्रोथ हो रही है तो एक स्टोरी अच्छी हो रही है, पॉइंट नंबर वन. एक और सबसे अच्छा एनालिसिस ये है कि जो GDP पर कैपिटा है, कि हम कितना कमाते हैं पर पर्सन, उसका हमेशा ये ट्रिगर बोलते हैं कि अगर $3,000 के करीब को हम क्रॉस करते हैं, दिस नंबर कई रिपोर्ट्स कहती हैं 2,000, कई रिपोर्ट्स कहती हैं $4,000, तो मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ, $3,000 पर ईयर से अगर आप ज्यादा कमाते हो तो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है. उसका यह मतलब कि उसके बाद सडनली लोग की कंजम्पशन, लोगों की प्रोपेंसिटी कि अभी हमें और चीजों पर स्पेंड करना है, वो आने लग जाती है. और ये हमने ऑलरेडी देखना शुरू कर दिया है. राइट, अगर मैंने जितने यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, डिजिटल में जितने भी लोगों से बात किया है, गेमिंग में स्पेशली, तो गेमिंग में इंडिया नंबर 2 है इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस. चाइना के बाद इंडिया आता है. नंबर ऑफ यूजर्स इंडिया में सेकेंड हाइएस्ट है इन द वर्ल्ड. नंबर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू पे हम शायद 51st या 52nd है, लेकिन नाउ वी आर क्लाइंबिंग. तो इंडिया में हमेशा यह था कि यार लोग तो खेल लेंगे गेम, लेकिन पैसा कोई नहीं देगा. यूट्यूब पे व्यूज आ जाएंगे, पैसा कोई नहीं देगा. क्लैश ऑफ क्लैन, विच इज माई फेवरेट मोबाइल गेम, मैं 12 साल से खेल रहा हूँ, 25% ऑडियंस क्लैश ऑफ क्लैंस की इंडिया से है. क्लैश ऑफ क्लैंस का ओवरऑल आई थिंक एनुअल रेवेन्यू 700 मिलियन है, 4 मिलियन रेवेन्यू खाली वो इंडिया से कमाते हैं. तो मतलब आधा परसेंट रेवेन्यू इंडिया से, 25% ऑडियंस इंडिया से. राइट, लेकिन ये सब चेंज हो रहा है. तो ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था ना, कि लोग कंज्यूम तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनकी प्रोपेंसिटी कि हमें पे करना है, हम चाहते हैं कि हम पे करें. यूट्यूब पे अगर लोग आए तो सुपर चैट में हम देंगे डोनेशन, सब्सक्रिप्शन आएगी तो हम पे करेंगे. अब जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि स्टार्टअप्स के ये इतने सारे आ गए हैं, पहले द कैन था, पता नहीं कितने लोग उसके लिए देते होंगे, अब द कैन है, मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट है, कैप टेबल है, कितने सारे आ गए हैं, एंड ट्रैकर है, सबके सब्सक्रिप्शन मॉडल्स कितने सारे लोग ले रहे हैं. तो ये जो मॉडल है नेटफ्लिक्स, आई थिंक लास्ट आई चेक नेटफ्लिक्स वॉज द हाइएस्ट मनी मेकिंग ऐप इन इंडिया. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेक बिजनेस, खाली मोबाइल में जितना सब्सक्रिप्शन खर्चा हो रहा है. राइट, डेटिंग ऐप्स, टिंडर वगैरह पे लोग पैसा खर्च कर रहे हैं. तो वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है. हम लोग खाने में ज्यादा अच्छा जा रहे हैं.
वन ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दैट इज कि पहले म्यूजिक के लिए कोई पे नहीं करता था, अब स्पॉटिफाई, आईट्यून्स पे सब लोग पैसे दे रहे हैं.
बिल्कुल,
एवरीबडी हैज बॉट इट. आई थिंक एवरीवन हियर मस्ट हैव बॉट एट लीस्ट वंस, एंड आई नेवर थॉट कि मैं कभी दूंगा नहीं. हाँ, अब मेरे पास यूट्यूब का भी प्रीमियम है, म्यूजिक के लिए मेरे पास स्पॉटिफाई का प्रीमियम, मेरे पास आईट्यून्स भी है.
करेक्ट, एंड ये काफी कॉमन है,
एंड ये अभी हुआ है इन लास्ट वन ईयर.
बिल्कुल, एंड मेरे ख्याल से वी आर गेटिंग टू दैट इन्फ्लेक्शन पॉइंट, और जब ये आएगा तो ये जो मोनेटाइजेशन है ये इंक्रीज होगी बहुत ज्यादा, एक्सपोनेंशियली. अगर वो इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ लोग बढ़ रहे हैं, मोनेटाइजेशन बढ़ेगी, तो सारे सेक्टर अच्छा करेंगे. तो मेरा ये आंसर है कि ट्रेंड इज ग्रेट फॉर इंडिया. तो ये तो ऑलमोस्ट वैसे है कि इंडिया पे अगर आपको बेट लेनी है तो दिस इज द टाइम, आप बेट लेते रहो.
इंडेक्स पे लगा दो, ज्यादा दिमाग नहीं होता.
इंडेक्स पे लगा दो, डाइवर्सिफाई करके लगा. फिर उस पर आता है कि क्या आपकी किस चीज में आपकी एक्सपर्टीज है जो आपको समझ में आता है. जैसे जो लोग रियल एस्टेट करते हैं वो ये बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट के अलावा हमें तो कुछ चीज समझ नहीं आता, हम नहीं लगाएंगे. जो क्रिप्टो करेंगे वो ये बोलेंगे कि हमें तो क्रिप्टो ही समझ में आता है, हम उसके अलावा कहीं नहीं लगाएंगे. दैट्स ओके. अगर आपको ट्रेंड राइट आपने पकड़ लिया प्लस आपने अपनी एक्सपर्टीज भी जोड़ ली तो देन योर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स विल बी अ लॉट मोर. तो वो आप उस एरिया में लगा दो पैसे. बट अगर आपको ये है कि मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट एरिया क्या है, आपकी कोई स्पेशल एक्सपर्टीज नहीं है, तो फिर आप इंडेक्स पे लगा दो, निफ्टी पे लगा दो. अगर आपको, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप स्टार्टअप्स में भी डाल रहे हो तो स्टार्टअप का भी पोर्टफोलियो बना लो.
Okay, let's talk about specific things because you talked about कि हर सेक्टर ऑलमोस्ट बढ़ सकता है, हर जगह इंडिया का टाइम आ रहा है. लेट्स टॉक अबाउट इन द रूम कि वॉट ऑल सेक्टर्स वी आर इंटरेस्टेड इन. ओके, वन इज द वेब थ्री स्पेस विच इज डेफिनेटली ग्रोइंग. सेकेंड इज क्रिएटर इकोनॉमी. यू फील दैट क्रिएटर इकोनॉमी, क्रिएटर टेक इज गोना गो बिगर कि अब हो गया, अब और नहीं बढ़ पाएंगे लोग?
नहीं नहीं, क्रिएटर इकोनॉमी तो अभी शुरू हो रही है. वो इसलिए शुरू हो रही है बिकॉज मोनेटाइजेशन. सी, अब क्रिएटर इकोनॉमी में अब जेन्युइन करियर बनना शुरू हुआ है. सी, जब आईपीएल आया था तो मैं ये कहूंगा कि इट्स लाइक 2008 में शायद आईपीएल लॉन्च हुआ था. तो क्या हम तब ये कहते कि यार क्रिकेट का हो गया बस अब ये है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि दैट इज द सिमिलर मूवमेंट, कि अब लोगों को जेन्युइनली लग रहा है कि क्रिएटर बनने से करियर बन सकता है. तो नाउ पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट टेकिंग दैट बेट कि हाँ यार ये हम बना सकते हैं. जब क्रिएटर्स और अच्छे अच्छे आएंगे तो और भी ऑडियंस उसको उसमें इंडल्ज होगी, और ऑडियंस इंडल्ज होगी तो और मोनेटाइजेशन बढ़ेगी. अभी तो वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आना है. तो अभी तो वो जो बिग बैंग है, जैसे आई थिंक इफ आई एम, मैंने ये नंबर खुद नहीं देखा बट कल मुझे किसी ने बताया कि जो लेटेस्ट दो ये आईपीएल टीम्स हैं वो 8000 करोड़ की बिकी है वर्सेस जो मेरे ख्याल से 2008 में था इट वॉज लाइक 1/10 दैट अमाउंट एक्सेट्रा. तो मतलब कितना ग्रोथ हो गया है. तो ऐसा नहीं है कि आईपीएल आने से, क्योंकि अब एक्चुअली लोगों को लगता है कि यार क्रिकेटर बन गया तो खाली ये नहीं है कि पैसा और फेम तभी मिलेगा जब मैं नेशनल टीम में हूँ. आईपीएल में भी आ गया तो इट्स वेरी वेरी गुड. अगर आईपीएल किसी रणजी में भी खेला तो वेरी वेरी गुड. उसके नीचे वाले लेवल पे भी आया तो भी वेरी वेरी गुड. आई कैन सस्टेन माय सेल्फ, आई विल हैव डीसेंट फेम, डीसेंट मनी.
नाउ गेट टू द जूस ऑफ इट. द जूस इज मेटावर्स होगा, ये हमें पता है. क्या है, व्हाट इज मेटावर्स, होगा क्या, मतलब ये क्या है?
तो ऑलरेडी हम लोग बहुत टाइम स्पेंड करते हैं डिजिटली, ठीक है, चाहे चैट हो, सोशल मीडिया हो, एंटरटेनमेंट हो, गेमिंग हो, शॉपिंग हो, एजुकेशन हो,
सब ऑनलाइन हो रहा है,
सब ऑनलाइन हो रहा है, जूम कॉल्स हो, हाइब्रिड वर्क अब हो गया एक्सेट्रा. लेकिन अभी हम देखें तो जो पूरा वेब टू वर्ल्ड है, जो करंट मोबाइल एप्स वगैरह है, वो सारा ना एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के लिए है. कि अमेजोन ने आपका वो बना दिया कि आप जल्दी से प्रोडक्ट तक पहुंच सको. फेसबुक ने फीड बना दिया कि आप जो आपको कंटेंट अच्छा लगता है वो पहले मिल जाए. गूगल सर्च ने दिखा दिया कि यार फटाफट आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल जाएं जो आप सर्च कर रहे हो. जब हम रियल लाइफ में जाते हैं, अभी भी लोग जैसे ये कहते हैं कि यार अगर मैं ग्रोसरी खरीदने जाऊँ ना, स्टोर में जाता हूँ ना, तो ज्यादा मजा आता है, वो पता चल जाता है मुझे कि क्या चाहिए था. अमेजोन पे जाता हूँ तो एफिशिएंसी है बट स्टोर में जाके एक अलग फीलिंग आती है. हेंस इवन इन द यूएस 75% आज भी ऑफलाइन है, राइट? तो वो ऐसा क्यों है? क्योंकि वी आर नॉट जस्ट मशीन्स. हम एक एफिशिएंसी के लिए नहीं जी रहे, एक्सपीरियंस, इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए जो हमारे सारे सेंसेस हैं वो अगर एंगेज होंगे तो वो एक्सपीरियंस बेटर होगा, तो हम इमोशनली ज्यादा कनेक्ट करेंगे, हमें ज्यादा अच्छा लगेगा, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, राइट? तो मेटावर्स का आइडिया आएगा क्यों? क्योंकि इट इज टेकिंग अस मोर टूवर्ड्स व्हाट द रियलिटी इज फॉर थिंग्स वी आर ऑलरेडी डूइंग. जो कुछ लोगों को ये लगता है कि यार वो जैसे मूवी आ गई रेडी प्लेयर वन, उसमें वो वीआर हेडसेट पहन के बैठे हैं, सबको लगता है कि फ्यूचर ही होगा मेटावर्स का, ऐसे ही काउच पे बैठे हुए होंगे, सारा रूम बिखरा हुआ होगा, बस वीआर हेडसेट पहन के मैं एक बहुत ही बढ़िया दुनिया में होऊंगा और मुझे पता ही नहीं है रियल दुनिया का. ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप 7, 8, 6, 12, 14 घंटे डिजिटली स्पेंड कर रहे हो तो वो डिजिटल एक्सपीरियंस जो आप ऑलरेडी कर रहे हो वो बहुत बेटर होने वाला है. इट इज गोइंग टू टेक यू क्लोजर टू रियलिटी. एंड व्हेन आई से क्लोजर टू रियलिटी डज नॉट मीन वर्चुअल रियलिटी. इनफैक्ट मेरे हिसाब से वीआर इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल प्ले इन द मेटावर्स. फॉर मोस्ट पीपल दे थिंक कि पूरा मेटावर्स वीआर के थ्रू होगा. माय बेट एंड व्हाट वी आर डूइंग इन ज़ायनवर्स, आवर बेट इज की मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू ही होगा. उसके भी क्या रीजंस हैं यार? एक तो आप देखिए कि वीआर इज सो इनकन्वीनियंट. एक तो मैं हेडसेट पहनूं अपने घर में ही हूँ, अगर अब मैं कैब में हूँ, मेट्रो में हूँ, क्लासेस के बीच में 10 मिनट वेट कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर सकता. तो वो कन्वीनियंस नहीं है. इट्स सो इरिटेटिंग कि मेरे सर पे है, इट्स सो एक्सपेंसिव, Now imagine playing PUBG and Tekken wearing a VR headset. मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ कि अरे Tekken खेलना है. After a while I'll be tired. मैं 10 घंटे तो नहीं खेल सकता. चलो गेम नहीं होगा. अच्छा मॉल, अब मॉल में घूम रहा हूँ यार. एक मेरे पास ऑप्शन है कि मोबाइल में मैंने अपना नेविगेशन ऐसे प्रेस किया, मैंने चलना शुरू किया, दूसरा है मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूँ. क्यों, व्हाट इज द पॉइंट? कोई पॉइंट नहीं है, राइट? फॉर पीपल जो गेमर्स हैं उन्हें ये पता है कि अगर जब मैं क्लैश ऑफ क्लैन खेल रहा होता हूँ ना, क्लैश ऑफ क्लैन तो 3D गेम भी नहीं है, 2D गेम है. जब मैं खेल रहा होता हूँ तो जैसे मेरी फैमिली में सबको पता है कि भाई मैं बोल रहा हूँ अटैक चल रहा है, तो कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अगर सब बैठे हैं यहाँ पे, अटैक चल रहा है, क्योंकि मैं इतना इमर्स्ड हूँ, मैं उस समय उसके अंदर घुसा हुआ हूँ. उसके लिए मुझे VR की जरूरत नहीं थी. तो जब लो एफर्ट, लो कॉस्ट, कन्वीनियंस मोबाइल दे रहा है, तो VR का कुछ आएगा नहीं. बेटर क्या होगा, अगर हम ये देखें गेमिफिकेशन और इमर्जन का ट्रेंड, एजुकेशन गेमिफाई हो रही है. रॉबिनहुड ने इन्वेस्टमेंट US में गेमिफाई कर दी. गूगल पे ने UPI पेमेंट्स गेमिफाई कर दी. कैसे? हर पेमेंट के बाद स्क्रैच कार्ड ले लो. स्क्रैच कार्ड लेने से क्या फायदा होता है कि जब मैं स्क्रैच कर रहा हूँ मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ मिलेगा पैसा, कुछ नहीं मिलेगा पैसा. पैसा मिलना तो इम्पोर्टेंट था, बट अमाउंट कितना मिलना था वो भी इम्पोर्टेंट है. वो बोल सकते थे ना 2% कैश बैक, जो बहुत क्रेडिट कार्ड बोलते हैं, लेकिन उसमें वो मजा नहीं आता. मजा क्यों नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है प्रिडिक्टेबल है. गेमिंग में जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, तो जो ये मैं आपको एक और इनसाइट बताऊंगा, हमने इससे पहले प्रोडक्ट बनाया था योवो, जो एक वर्टिकल फीड इंटरैक्टिव वीडियो प्रोडक्ट था. तो हम ये सारे सोशल मीडिया एप्स का फीड स्टडी कर रहे थे. तो उस फीड में ये होता है कि एक एक एक्सपेरिमेंट किया गया था रैट्स पे, कि अगर तो वो एक जगह जाएं और उसको प्रेस करें तो उनको खाना मिलेगा, लेकिन अगर वो एक जगह जाएं और उसको प्रेस करें, कभी खाना मिले, कभी खाना ना मिले, कभी खाना बहुत ज़्यादा मिले, तो वो ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं. तो अगर आप सारे सोशल मीडिया फीड्स के एल्गोरिथम देखोगे, वो ऐसे बनते हैं कि क्या वो आपको आइडिया ही होगा, लोग ये सोचेंगे कि सारा अच्छा कॉन्टेंट दिखा दो यार अभी. बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट अगर रूल ऑफ थंब है कि अगर आपको 6 चीज़ें दिखाते हैं, उसमें से एक अच्छी होती है, एक ओके होती है और 4 खराब होती है. क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता जब आप फीड कर रहे होते हो, आप कहते हो बेकार कंटेंट, बेकार, ओह अच्छा कंटेंट. तो इसलिए स्क्रैच कार्ड में वो जो आइडिया है ना कि ओह माय गॉड लॉटरी इफेक्ट, कुछ मिल गया, वो जो इमोशनल हाई है वो बहुत है. इसलिए ये जो गेमिफिकेशन पेमेंट्स की भी हो गई. गूगल पे आपको लेवल और बैजेस देता है UPI पेमेंट करने के लिए. अगर मैं आपको वैसे रोकूं और मैं बोलूं यार आप मास्टर UPI पे मास्टर हो, आप इतने लोगों को UPI पेमेंट्स करते हो, उसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है. लेकिन जो आदमी खुद अपने आप सोचेगा यार मास्टर बन गया, अब वो मास्टर किस भी चीज का बना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुद को अच्छा लगा, खुद को अच्छा लगा तो सॉल्व हो गई बात. पेमेंट्स इज अ यूटिलिटी. तो यही जो रियलिस्टिक इमोशनल एंगल है, यही ऑलरेडी मेटावर्स कर रहा है. तो मेटावर्स जो है, मैं कहूंगा कि दैट इज द अल्टीमेट सुपर ऐप. टाटा न्यू भी सुपर ऐप लॉन्च की है, बट जो अल्टीमेट सुपर ऐप होगी वो मेटावर्स होगा. अगर आप 10 सेंट का भी सक्सेस देखो चाइना में, विच इज प्रॉब्ली वन ऑफ द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सुपर एप्स वर्किंग इन आर एंटायर वर्ल्ड. US में भी ऐसी नहीं है. 10 सेंट क्यों काम करा? क्योंकि चैट भी उस पर है, गेम्स भी उनके पास हैं, शॉपिंग भी उनके पास हैं, शॉर्ट वीडियो एप्स भी उनके पास हैं. तो उन्होंने एंटरटेनमेंट, सोशल, शॉपिंग, फाइनेंस सबको कंबाइन कर दिया. एंड एक्चुअली उसका डिसेंट्रलाइज वर्जन मेटावर्स है.
सो इज दैट, तो ओके नाउ व्हाट इज मेटा बिल्डिंग देन? वो भी सिमिलर चीज करने वाला है, पूरा कॉमर्स को ऊपर लेके जा रहा है.
देखो उनका आइडिया तो यही है, क्योंकि जो उनका फिलोसफी है वो ये है, एक प्लेटफॉर्म बनाओ, उस प्लेटफॉर्म पे उन्हें पता है कि मोनेटाइज कैसे करना है, लोग आएंगे, एंगेज होंगे, उनको हम एड्स बेचेंगे. ठीक है, मैं इसमें दो चीजों से डिफर करता हूँ. पहला ये कि वो बना रहे हैं एक सेंट्रलाइज मेटावर्स. आई थिंक द वर्ल्ड विल बी डिसेंट्रलाइज. फर्क क्या है? फेसबुक इज बिल्डिंग जो फेसबुक का आता है, जो फेसबुक का DNA है, कि वी विल बिल्ड द एक्सपीरियंस. हम सब कुछ कंट्रोल करेंगे, आपका डेटा हमारा, हम जो करना चाहें वो करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगता बाहर चले जाओ. हम बना रहे हैं कि यार ऑटोनोमी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ownership is very important. इसका भी ट्रेंड एक्चुअली ऑलरेडी आ चुका है. अगर हम ये देखें जो पुरानी कंपनीज थी, उसमें फैमिली के या जो फाउंडर्स थे उन्हीं के पास इक्विटी होती थी, किसी और को नहीं मिलती थी. अब जो स्टार्टअप्स हैं वो ESOPs देते हैं. क्यों देते हैं? फ्री में देते हैं. क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं ना कि यार टीम को अगर मिलेगा ESOP तो वो और मेहनत करेंगे, सक्सेस का चांस और ज्यादा है. अब आप इमेजिन करो कि मैंने अपने कस्टमर को भी ESOPs दे दिए, मैंने अपने सप्लायर को भी ESOPs दे दिए, जो मेरे लिए मार्केटिंग कर रहा है मैंने उसको भी ESOPs दे दिए, मैंने टीम को भी ESOPs दे दिए, तो अब कस्टमर भी कह रहा है कि यार इसका सक्सेस हुआ तो मैं भी जल्दी हुआ, ये खाली लॉयल्टी नहीं है,
शेयर दे दिए एक तरीके से,
हाँ तो मेरी ओनरशिप भी हो गई। सप्लायर कह रहा है हाँ यार मैं जिसको सप्लाई कर रहा हूँ उसमें पैसा तो कमा रहा हूँ लेकिन अब मैं और मोटिवेटेड हूँ, जो मार्केटिंग कर रहा है वो और मोटिवेटेड हो गया।
मैं फ्रंट बेसिस पे तो मैं पैसे कमा ही रहा हूँ, बैक एंड में मुझे जो ये थोड़े से जो 10-15-50 हज़ार जो भी शेयर मिले इसकी वैल्यू और बढ़ रही है तो मैं इसी से बिजनेस करूंगा।
बिल्कुल। तो अब आप ये इमेजिन करो कि अगर स्टार्टअप्स ने ESOP सिर्फ टीम को दिए, अब अगर मैं सबको दे दूं तो वो बिजनेस कितनी जल्दी बढ़ेगा। इसलिए अगर वेब टू बिजनेसेस को सिर्फ 8 से 10 साल लगे यूनिकॉर्न या डेकाकॉर्न बनने में, वेब थ्री बिजनेसेस बहुत जल्दी करेंगे। जो वेब थ्री बिजनेसेस यहाँ पहुंचेंगे वो बहुत रैपिड पेस पे पहुंचेंगे, और इसीलिए ओनरशिप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वही वाली बात है कि आप अगर एक किसी घर में रहते हो एंड आप उसको रेंट कर रहे हो तो ठीक है आप अपना आपका घर है आप उसको ठीक रखोगे, लेकिन आप कोई लॉन्ग टर्म चीज नहीं करोगे। आप कहोगे कि यार मैं रेंट पे करता हूँ ये घर है, बट अगर आप उसके ओनर हो, चाहे आप लोन पे भी ले रखा हो घर पे, तो लोन का भी इंटरेस्ट रहे हो, लेकिन अब मैं ओनर बन गया, कैश फ्लो में कोई फर्क नहीं है लेकिन मैं ओनर बन गया, अब मैं केयर करूंगा, अरे दीवार खराब हो रही है, कम्युनिटी में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सिक्योरिटी सब सही रहे, मैं देखता हूँ कि गलत क्या हो रहा है, रेंटर आ रहे क्या फर्क पड़ता है, अपने को 6 महीने बाद यहाँ इस सोसाइटी से जाना है, हम कुछ नहीं करेंगे, तो वो सोसाइटी अच्छी बन गई, सोसाइटी अच्छी बन गई तो उसके लोग अच्छे आएंगे, लोग अच्छे आएंगे सोसाइटी अच्छी रहेगी, रेट्स भी बढ़ेंगे, आपको भी फायदा हो गया। तो यही है फर्क।
एंड दिस आई हैव सीन मेरी पर्सनल लाइफ में, सो देयर वाज अ हाउस लास्ट ईयर आई वाज लिविंग इन ऑन रेंट, और उसमें एसी के पानी की वजह से ना वो थोड़ा सा वो खराब हो गया के बाद, राइट, मैंने अरे 6 महीने छोड़ना है ना क्या करो,
बिल्कुल
6 महीने थे मुझे रहे हुए उधर, 3 महीने हुए थे, मैंने 6 महीने बाद छोड़ना है, मैंने कहा छोड़ो ना चलेगा,
बिल्कुल
सेम जब मैं मेरे घर गया विच वेयर माई फैमिली लिव्स इंदौर, वहां पर अगर मैं कुछ खराब देखता हूँ तो मैं हाथ के हाथ फोन करता हूँ इसको अभी ठीक करो
अभी, बिल्कुल। तो यही तो सबसे बड़ा फर्क है। और अब आप इमेजिन करो कि ये सबके लिए होगा, सबको ओनरशिप मिलेगी, और ये ओनरशिप तभी हो सकती है जब डिसेंट्रलाइजेशन होगा।
सो पहले मैं क्वेश्चन पूछने वाला था कि जो फेसबुक US में बना रहा है क्या ज़ायनवर्स इंडिया में वही बना रहा है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जो फेसबुक बना रहा है क्या ज़ायनवर्स उसी रिजल्ट की तरफ जा रहा है लेकिन उसका वे डिफरेंट है?
नहीं, आई थिंक हमारा विजन ही अलग है। फ्यूचर, बट उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका अलग है। हम ये कह रहे हैं कि यार ओनरशिप, और जो मैंने आपको अभी बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, फेसबुक कह रहा है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फेसबुक कह रहा है कि VR इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मैं कह रहा हूँ VR तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने अभी बोला मोबाइल इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, एक तरीके से विजन अलाइंड है कि मेटावर्स बन रहा है, बट तरीका उनका बिल्कुल अलग। हम बना रहे हैं इंडियन कल्चर के अराउंड, वो वैसे ही बना रहे हैं एक प्रोडक्ट जो उनको समझ में आता है। हम क्यों इंडियन कल्चर के अराउंड बना रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इसका भी एक एग्जाम्पल लूँ कि मैं लंदन में एक डेकेड प्लस रुका हूँ, तो वहां पे एक सबसे ज्यादा जो कमी होती है जो सारी NRI कम्युनिटी को लगती है, वो एक होता है मिसिंग ऑफ अपनापन, एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग मिसिंग होती है। चाहे बहुत अच्छी कंट्रीज है, ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सक्सेस मिलता है लोगों को, लेकिन एक हमेशा एक अपनापन की फीलिंग मिसिंग रहती है,
अपने देश जैसी बात का,
बिल्कुल। एंड वो खाली फैमिली की नहीं है, ये नहीं है कि अरे यार मेरी फैमिली पास होती तो हो जाता।
नो नो, आई आल्सो फील द सेम थिंग एवरी टाइम आई गो देयर फॉर ट्रैवलिंग आल्सो इन 10 डेज, आई एम लाइक,
चाहे हम यहाँ आगे बोले यार क्या ट्रैफिक है, क्या ये खराब है, यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, ये गाय क्यों घूम रही है, ये क्या हो रहा है, लेकिन वो एक अपनेपन की फीलिंग मिसिंग है। तो मुझे लगता है कि ये जो जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, अब मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा सबसे जो मैं गेम ज्यादातर खेलता हूँ वो क्लैश ऑफ क्लैंस है। यार अब मैं बड़ा इमोशनली अटैच हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस से, क्योंकि मैं 12 साल से खेल रहा हूँ, बट ऐसा नहीं हो सकता था कि कोई ऐसा गेम बनता जो मेरा कॉन्टेक्स्ट, जो मैं पढ़ता हुआ आया हूँ, जिसको मेरे को पता है जिस चीज के बारे में, उससे बनता। अब ये लोग गॉड ऑफ वॉर वगैरह बनाते हैं वाइकिंग्स पे, सब खेलते हैं, इंडिया में भी बड़ा वो है, तो यार उन लोगों का वो कल्चर है, उनको वो समझ में आता, हमें वो अडॉप्ट करना पड़ा क्योंकि कोई चॉइस नहीं थी। तो हमारे को तो वो बनाना चाहिए ना, प्रोडक्ट क्वालिटी उतनी ही अच्छी बनाएंगे हम, उससे भी बेटर बनाएंगे, लेकिन एक कॉन्टेंट भी ऐसा होगा जिसमें हमें वो अपनेपन की फीलिंग आनी चाहिए, इसलिए हम इंडियन कल्चर पे बना रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएट,
ज़ायनवर्स इंडियन कल्चर के ऊपर गेम्स बना रहा है,
गेम्स, 3D worlds, eventually हम comics, figurines, पूरा ये सारा capture करेंगे।
तो अभी at this point, do you have apps or do you have, like, how can I get into this Zionverse? Ki online hi hai abhi. Kaise karna hai?
To abhi to humne abhi tak ek December mein last year Lakshmi NFT launch ki thi. Wo humne 4 crore ki sale ki sari India mein. Ab hum Trimurti NFT launch kar rahe hain. अभी अभी क्योंकि पेमेंट गेटवेज का जो भी इशू आया है आफ्टर द रीसेंट इवेंट्स, मैं नाम नहीं लूंगा, सबको पता ही होगा जो ये फॉलो कर रहे हैं कि किसकी वजह से है. तो उसकी वजह से लॉन्च की डेट्स में थोड़ा इशू आ सकता है क्योंकि बैंकिंग सिस्टम ने अभी वो कर दिया. बट नेक्स्ट हमारा त्रिमूर्ति NFT लॉन्च होगा. फिर हम लॉन्च कर रहे हैं हमारा गेम, पहला गेम विच इज कॉल्ड रणभूमि. द गेम इज एक टीम डेथ मैच गेम कि हम 5 लोग हैं, आप 5 लोग हो, हम एक दूसरे का गेम्स खेल रहे हैं डेथ मैच मोड में. बट गेम इज अराउंड कुरुक्षेत्र. तो आई कैन प्ले with a bow and arrow, I can play with a gada, I can play with a sword, I can play with a bhala, I can play as an assassin. So content, the idea ye hai ki yaar, acha game mein to team deathmatch hota hai, puzzle hota hai, yahi hota hai, lekin jo hame context chahiye, jo ek emotional connect hai, God of War mein aapko connect hai. Jo log Valorant khelte hain, Valorant is also quite wo, jitne characters honge Valorant ke, unko logon ko connect aa raha hai ki yaar, I identify with this character more. But why are we being, matlab वो आउट ऑफ चॉइस, मतलब लैक ऑफ चॉइस, हमें इन गेम्स की तरफ ही जाना पड़ता है, राइट? तो वो जो कंटेंट है वो भी इम्पोर्टेंट है कि मैं उस कंटेंट की ही चीज क्यों कंज्यूम करूं. अगर हम ये देखें, माफिया की स्टोरीज ले लो, राइट? इटालियन माफिया की स्टोरीज पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जापानीज पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इंडियन माफिया की स्टोरीज इंडिया में बहुत फेमस है. हम लोग जो आज अगर आप देखो नेटफ्लिक्स वगैरह पे, सारा कॉन्टेंट वही है जो इंडिया का बन रहा है. हम सारे लोग वही कंज्यूम कर रहे हैं, राइट? तो ये गेमिंग में भी, मेटावर्स में भी नेचुरली आएगा.
यस, सो नाउ मुझे ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि Zionverse इंडियन कल्चर को लेके उस पर गेम्स बना रहा है, उसके कंटेंट बना रहा है, उसको इंटरैक्टिव बना रहा है, ताकि हम लोग, हमारा जो कल्चर है, हमारी चीजें, एटलीस्ट मोर देन इट्स अ कल्चरल बैटल, इट्स अ ऑप्शन, इट्स अ प्रेफरेंस. यार मैं बचपन से यही सब सीख के बड़ा हुआ, तो मुझे और इसमें इन्वॉल्व होके इसमें और आके खेलना है और गेम्स करना है और मजे करने हैं, राइट? तो एक तो ये मेरी सॉल्व हो गई प्रॉब्लम कि मुझे किसी की नई हिस्ट्री नहीं जाननी. तो मेरे पास बहुत इजी है. सो नाउ व्हेन आई एम प्लेइंग गेम्स, नाउ व्हेन आई एम वोटिंग फॉर समथिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर पेरेंट्स टू आल्सो वॉच दिस. नहीं तो मम्मी पापा क्या करते हैं कि जब गेम चला रहे, कहता नहीं क्या खेल रहा, हट जाओ. सो एक तो मेरे फैमिली कॉन्वर्सेशन अप हो गई, मेरे लिए कभी नया हिस्ट्री सीखना मुझे वापस नहीं पड़ा. एंड थर्ड इज यू से इट्स बिल्ट ऑन अ डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड, राइट? तो जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, दे विल एक्चुअली मेक इनफ मनी इन दिस, बिकॉज वो इसमें इन्वॉल्व है, तो उन्हें टोकन्स मिलेंगे या उन्हें कोई एक ईसॉप जैसे, एक शेयर जैसे कुछ मिलेगा. तो Correct. क्या मिलेगा? आई एम इंटरेस्टेड इन दैट.
तो हमारा जो ये इक्विवेलेंट है आपका ओनरशिप का, उसका नाम है शक्ति टोकन्स.
ओके.
तो अगर आप गेम खेलेंगे, स्टेकिंग करेंगे, जो हमारी त्रिमूर्ति NFT भी आ रही है, वो ऑब्वियसली त्रिमूर्ति है, तो हमारे 3 गॉड्स शिवा ब्रह्मा विष्णु, उसके अलग अलग रेरिटी है. रेरिटी में ये होगा कि जितना आप हायर लेवल पे जाएंगे, उतने आपको एक्सेसरीज, वेपन्स, बेटर कॉस्ट्यूम्स, एस्थेटिक्स मिलेंगे. लेकिन साथ में आपको मिलेगा शक्ति टोकन. शक्ति टोकन है हमारा इक्विवेलेंट ऑफ द ईसॉप.
ओके. द टोकन्स व्हिच वी विल
द टोकन्स व्हिच
सो लोग खेलेंगे अगर गेम तो उन्हें टोकन्स मिलेंगे.
लोग अगर इन्वेस्ट करेंगे तो भी टोकन मिलेंगे. लोग अगर रेफर करेंगे औरों को तो भी टोकन मिलेंगे. लोग अगर सोशल पे Zionverse के और कम्युनिटी की हेल्प करेंगे तो भी उन्हें टोकन मिलेंगे.
तो और अगर मान लो मैं आज एग्जांपल दे रहा हूँ, आज मैं ये वीडियो देखता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, मुझे मजा आ गया और मैं अभी 1000 टोकन खरीद लेता हूँ, 1000 शक्ति टोकन खरीद लेता हूँ, राइट? देन आई एम अ पार्ट ऑफ इट. अब मैं उस 1000 शक्ति टोकन से एक तो इनसाइड द गेमिंग वर्ल्ड आई कैन बाय फ्यू थिंग्स, प्लस मैं जितना गेम खेलूंगा, मैं जितने लोगों को बोलूंगा और जितने लोग मेरे साथ इसमें खेलेंगे, तो जितने और नए लोग आएंगे इसकी प्राइस बढ़ती जाएगी. तो मेरे लिए जो 1000 टोकन है, दैट माय मनी विल आल्सो ग्रो.
करेक्ट. बट मैं इसका सस्टेनेबल तरीका ये बोलूंगा कि एक तो ये तरीका है जो थोड़ा सा क्रिप्टो में है कि सप्लाई लिमिट कर दो, डिमांड बढ़ाते रहो, पैसे बढ़ जाएंगे. ओके, वो है. बट दूसरा जो सस्टेनेबल तरीका है कि Zionverse के वर्ल्ड में हम एक पूरी इकोनॉमी बना रहे हैं, राइट? विच इज जैसे मैंने कहा कि
सुपर ऐप,
जो पूरा सुपर ऐप है, सारा डिजिटल बिजनेस उस पर होगा. अगर आप गेम खेलते हो तो गेमिंग का जो स्पेंड है वो आप Zionverse में कर रहे हो. किसी ने एक अच्छी कॉस्ट्यूम बनाई, वो अगर आपने खरीदी, वो हो गई. लैंड की सेल्स हुई, वो हो गई. इवेंचुअली Amazon जैसी ऐप्स को हम इंटीग्रेट करेंगे, आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो. ICICI बैंक का एक अपना एरिया है जिसके अंदर आप जा रहे हो, कस्टमर से बात कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो. तो चाहे आपको सोशली कनेक्ट करना हो, नेटफ्लिक्स टाइप कोई वीडियो देखनी हो साथ में, हमने ऑलरेडी वीडियो इंटीग्रेट कर रखी है, अमेजोन जैसा बिजनेस करना हो, साथ में गेम्स खेलने हो और लोगों का प्रोडक्ट खरीदना हो, ये सारा इस सुपर ऐप में होगा। हर ट्रांजैक्शन पे वी विल चार्ज अ कमीशन। दिस इज येट टू बी फाइनलाइज्ड, बट लेट्स से वी आर चार्ज 5%, ठीक है, दिस इज स्टिल टू बी फाइनलाइज्ड। 5% में से 1% जाएगा एक्सपेंसिस पे करने के लिए, 4% का 3% जाएगा एक ट्रेजरी में, तो जो भी टोकन होल्डर्स हैं वो एक्सेस होंगे ट्रेजरी के पैसे का, और 1% जाएगा कि शक्ति टोकन्स ओपन मार्केट में बाय होंगे। तो टोकन की क्या वैल्यू है कि रेवेन्यू जो कमा रही है कंपनी 5% का, जो 4% रेवेन्यू है वो टोकन होल्डर्स को जा रहा है। तो ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस ज़ायनवर्स जितना पॉपुलर होता जाएगा, उस पर इतने ट्रांजैक्शंस होते जाएंगे, तो उतना ही वेल्थ एंड पैसा टोकन होल्डर्स कमाते जाएंगे, बिकॉज दे आर ओनर्स ऑफ ज़ायनवर्स। एंड प्लस ऑब्वियसली यू आर नाउ, बिकॉज यू आर ओनर, यू आर ऑल्सो गवर्निंग कि नहीं यार ऐसा मत करो, ऐसा करो।
से बन गया,
आपकी वोटिंग बन गई, आप बता रहे हो कि क्या करना है।
सो टेक्निकली इफ आई बिलीव इन दिस आइडिया राइट नाउ, तो अगर मैं ये आइडिया बिलीव करता हूँ और मैं इसका अगर एक छोटा सा शेयर होल्डर बन जाता हूँ, देन एवरी टाइम यू मेक मनी और द कंपनी मेक्स मनी और तुम जितनी वैल्यू बढ़ो, मैं भी पैसे
एंड
दिस इज, इसके लिए मुझे कोई बड़ी फॉर्मेलिटीज नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं करना, आई कैन डायरेक्टली गो एंड स्टार्ट डूइंग इट
राइट नाउ।
बिकॉज यूजुअली यही होता है राइट, कि अगर आप किसी स्टार्टअप में, दिस इज बेसिक, लाइक लेट्स एक्सप्लेन द बेसिक वर्ड। पहले ऐसे होता था कि आपको है ना कंपनी जब तक पब्लिक आती तब तक वेट करना होता था। तो सबको लग रहा है यार जोमैटो तो बहुत अच्छी चीज है, जोमैटो तो बढ़ने वाला है, लेकिन तुम जोमैटो को कुछ नहीं खरीद सकते, तुम बाय नहीं कर सकते जब तक जोमैटो पब्लिक में नहीं आती, और जब वो पब्लिक में आती तब वो इतने बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पे आती कि तुम तब खरीदो या नहीं खरीदो उस टाइम पे तुम्हारी रिवॉर्ड्स बहुत कम होते हैं कि यार मल्टीफोल 10x 20x 100x में पैसा नहीं कमा पाऊंगा अब, तो वो ऑप्शन खत्म हो गया कि आईपीओ वाला। अब ऐसा होने लगा कि अगर आप थोड़े से कनेक्टेड हो तो आप स्टार्टअप्स में पैसा डाल सकते हैं, आपका थोड़ा अगर कनेक्शंस अच्छे हैं, आपके पास ज्यादा पैसे एक साथ 10 लाख रुपए डालने के लिए हो तो आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। उसका भी ये एडवांस वर्जन है कि अगर आज मुझे 10 लाख भी नहीं है और मुझे सिर्फ फर्स्ट डे पे स्टार्ट करना है टू अर्न, एंड इफ आई बिलीव कि ये स्टार्टअप बढ़ेगा या मेटावर्स बनेगा या ये जो कंपनी है ये मेटावर्स में कुछ और बनाएगी, सो आई कैन इन्वेस्ट एंड मेक अ पाई आउट ऑफ इट, कि जब कल पे ये जिस दिन आईपीओ हो जाए 10 साल बाद तब मेरा पैसा हो सकता है 1000x हो जाए या 100x हो जाए या कुछ भी हो जाए।
इसका एक और एडवांस लेवल भी है। तो ये तो है ही जो आप कह रहे हैं। तो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि 2013 में जब मैं वापस इंडिया आया था तो आई हैड बॉट माय बोट के हेडफोन्स, एंड तब इतना पॉपुलर नहीं था बोट जितना आज तो बहुत पॉपुलर है, एंड आई लव्ड द हेडफोन्स, एंड मैंने पता नहीं कितने लोगों को बोला होगा कि यार ये खरीदो, एंड आई हैड एक्चुअली सेंट एन ईमेल जिसका आज तक मेरे को रिप्लाई नहीं मिला कि यार अगर मुझे पैसा डालना तो कोई ऑप्शन है क्या, क्योंकि आई वाज लाइक ये तो चलेगी चलेगी राइट। तो एक तो ऑप्शन ये है कि परमिशनलेस वे से बिना किसी को कोई कंपनी की परमिशन लिए या कुछ ऐसा लिए टोकन्स खरीदे, आपने पैसा डाल के आप ओनर बन गए, लेकिन यहाँ पे आप अपना लेबर एफर्ट के लिए भी टोकन्स में आपको मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल ज़ायनवर्स, मतलब दिस इज बाय द वे ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ मेटावर्स, तो ज़ायनवर्स में हम 52% टोकन्स जो है आपको एफर्ट के लिए देंगे, पैसे के लिए नहीं देंगे। अगर आपने गेम ज्यादा खेला तो वो आप जो हमारे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो उसके लिए भी हम आपको ओनरशिप दे रहे हैं। अगर आपने और लोगों को रेफर किया उसके लिए भी हम आपको टोकन दे रहे हैं। अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करके उसको स्टेक किया, जितने भी लोग वेब थ्री और क्रिप्टो में उन्हें स्टेकिंग पता होगा, उसके लिए भी हम आपको टोकन्स दे रहे हैं। खाली ये नहीं है कि आपको टोकन्स खरीदने की जरूरत है, लेबर और एफर्ट और जो आप हमारे लिए काम कर रहे हो इनडायरेक्टली उसके लिए भी आपको टोकन्स मिलेंगे।
तो तुम्हें कुछ भी फ्री में करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें टाइम, अगर अब तुम दे रहे हो टाइम भी तुम्हारा फ्री नहीं है, तुम्हें उसके लिए भी
टाइम की तो वैल्यू होनी चाहिए। और ये तो होना ही चाहिए कि अगर मैं खेलता जा रहा हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस और मैं आ रहा हूँ, तो क्लैश ऑफ क्लैंस को भी तो फायदा है ना कितना, और मैं तो पता नहीं कब से, जब से उनका मंथली पास लॉन्च हुआ है, मेरा तो फर्स्ट ऑफ द मंथ पे मोस्टली मैं तो खरीदता रहता हूँ राइट, और वो 400 रुपए का होता है। तो अगर मैं खरीदता जा रहा हूँ मेरा लेवल बढ़ रहा है, अगर मुझे भी ये होता कि कुछ मुझे भी वापस मिल जाता, मैं अब अभी भी शायद क्लैश ऑफ क्लैंस छोड़ूंगा कि मैं 12 साल से खेल रहा हूँ, बट एक और मोटिवेशन मिल जाता ना मुझे कि यार ये तो बहुत सही है, मैं ज्यादा एंथुजियास्टिक होता, हो जाता है मैं 15-20 क्लैन बैठ के ये फुल टाइम काम
करता हूं। यू आई थिंक आपके मॉम डैड बहुत खुश हो जाते लाइक आई कैन सी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उनके मॉम डैड बहुत खुश हो जाएंगे, चलो मेरा बच्चा दिन भर खेल रहा है look, because I know this is sweet age, especially 12th ke baad se college ke beech mein time hota hai, where most of the people play a lot of games.
Yeah.
And parents are annoyed ki yaar bas ye kya karta hai, din bhar game khelta, apne doston ko bulata, unko bhi ye game khelata.
Correct.
Sab baith ke yehi khel rahe hain PS pe.
Correct.
To ab wo karega to at the same time he's making money to do all of this.
Correct. And see, like ye log ye wali cheeze log bahut bolte hain e-sports walon ke liye. But e-sports walon ka ek level jo hai wo sabka, hum sabka level nahi hota. Mera to nahi ho sakta. I do not know how to play Valorant or CS Ghost level ka, right? लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये अब अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी. आपका वो लेवल होना जरूरी नहीं है. अच्छा, वो लेवल होगा तो आप अलग कमाई कर लोगे, अलग प्रोफेशन बना लोगे, लेकिन आप अगर दिन में आधा घंटा एक घंटा भी इन्वॉल्व हो तो भी आप ओनर बन जाओगे.
तो टाइम पास में मैं गेम खेल रहा हूँ, भले मैं उतने अच्छे लेवल का नहीं खेलता हूँ, तो भी आई विल मेक इट.
तो भी यू विल मेक इट. करेक्ट. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट. एंड एग्जैक्टली लाइक आई सेड, ये हम क्यों कर रहे हैं, हम क्या मतलब सारा मेटावर्स और वेब थ्री तरफ क्यों जा रहा है, कि अगर आपको ओनरशिप दे दी तो आपका इंसेंटिव बढ़ गया. इंसेंटिव बढ़ गया तो आर चांसेस ऑफ सक्सेस आर इवन मोर, क्योंकि आप करोगे मेहनत. मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, हमारी ज़ायनवर्स की डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, जिसमें आपके भी कुछ टीम के लोग ऑलरेडी पार्ट है, मुझे पता चला एंड इट वॉज वेरी ग्रेट टू नो दैट. तो उसमें मैं ये आपको बोलूंगा कि मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि यार आप हमारी ना एक्सटेंडेड टीम हो. हम ज़ायनवर्स में ऑफिशियली 50 लोग हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हम 200 लोगों की वो है. आप बिलीव नहीं करोगे, अभी तक तो शक्ति टोकन हमने लॉन्च भी नहीं किए, बट वो लोग इतने इन्वॉल्व हैं डिस्कॉर्ड पे कि वो दो दो पेज के मुझे डीएम्स लिखते हैं कि मैंने इस वीकेंड ये वाला सिस्टम एनालाइज किया, उसमें ये अच्छा था, ये अच्छा था, ये अच्छा था, ये खराब था, ज़ायनवर्स को इनमें से ये चीजें करनी चाहिए और आप इसको एनालाइज करो. मैं कहता हूँ ओ माई गॉड, मैं वही पूरा डाउनलोड करके अपनी टीम को फॉरवर्ड करता हूँ, लेट्स लुक इन टू दिस. मैंने बहुत बार अपनी AMA कॉल्स में ये बोला है कि इट इज क्रेजी. बहुत लोग मुझे आके बताएंगे कि अच्छा ज़ायनवर्स का नाम आपने ऐसे रखा, इसको ऐसे सोचो, शक्ति टोकन का लोगो है, इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाओ. हमने जो त्रिमूर्ति NFT है, एक महीना इटरेशंस किए हैं विद द कम्युनिटी, कि हम जाते हैं कम्युनिटी को बोलते हैं कि यार ये हमारा प्रपोजल है, आई थिंक दिस इज द वे वी शुड डू इट. वो हमें फीडबैक देते हैं एकदम से, और इट इज अ वेरी आई विल से इमोशनली चार्ज्ड फीडबैक, विच आई रियली लव, क्योंकि मैंने हमेशा कम्युनिटी को बोला कि जैसे क्रिकेट है, अगर इंडिया हारती है या जीतती है तो वी आर वेरी इमोशनल अबाउट इट, क्योंकि हमें इतना अच्छा लगता है वो. तो इट्स ऑल्सो वेरी इमोशनली चार्ज कि ऐसे ही करना चाहिए, अगर ये ऐसे नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं चलने वाला, फिर वो नहीं नहीं हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, देन दे डू इट. तो ये जो ओनरशिप का एस्पेक्ट है, अभी तो टोकन भी नहीं मिल रहे, बट दे ऑलरेडी नो कि अगर हम उनकी बात सुन रहे हैं और प्रोडक्ट उस डायरेक्शन में जा रहा है तो दे नो दे आर गोइंग टू गेट दैट ओनरशिप. तो इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है टू अस एज एन इकोसिस्टम ऑलरेडी.
That's crazy. अच्छा, quick question for everyone. अब इतने लोगों ने टाइम दिया, इतने लोग स्पेंड कर रहे हैं, they are watching this now. हमें शक्ति टोकन कैसे मिलेगा? How are we gonna get it? I want शक्ति टोकन्स.
अभी तो सबसे आसान तरीका है कि जैसी त्रिमूर्ति NFT लॉन्च होती है, आप त्रिमूर्ति NFT खरीदिए, त्रिमूर्ति NFT से आपको शक्ति टोकन्स मिलेंगे. त्रिमूर्ति मिले भी, शक्ति टोकन्स भी मिले, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स भी मिले, उसके बाद एक 3D अवतार भी मिलेगा. मतलब इससे ज्यादा तो जान ही ले सकते हो.
Alright, this is the last question which mostly I ask a lot of people is, what's in it for you? Why are you doing all of this? क्यों कर रहे हो ये सब?
तो मैं ये बोलूंगा, जैसे हमने पैशन की बात की, तो चीजें क्रिएट करना मेरा एक पैशन है. मतलब आई एम रियली पैशनेट कि मुझे ना कुछ बहुत इम्पैक्टफुल क्रिएट करना. एंड मैं इम्पैक्ट को वैल्यूएशन वेल्थ में खाली नहीं गिन रहा. ऑफकोर्स दैट इज अ गुड ऑब्जेक्टिव स्कोर टू नो कि एक्चुअली वो इम्पैक्ट है कि नहीं, क्योंकि अदरवाइज इट कांट बी. यार मुझे तो लगता है कि हमने कुछ बड़ा इम्पैक्टफुल बनाया, कुछ उस पर एक ऑब्जेक्टिव मेजर भी होना चाहिए. तो सिर्फ उसकी वजह से एक स्कोर है, जो भी वैल्यूएशन होगी, जो भी वेल्थ बनेगी, लेकिन आई रियली वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग. तो मुझे उस क्रिएशन प्रोसेस में बहुत मजा आता है. आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट. मुझे Web3 में मजा क्यों आता है, क्योंकि मुझे लगता है ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है तीन चीजों का, और तीनों चीजों में बहुत एंजॉय करता हूँ, विच इज कंटेंट, टेक्नोलॉजी एंड गेमिंग. एंड जब हम ये गेमिंग कर रहे हैं, जो आपने भी पहले बोला कि इसमें एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, क्योंकि इसमें एक इकोनॉमी है. किसको कितनी ओनरशिप देनी है, उसके क्या करने से, वो ओनरशिप के लिए जब हम रेवेन्यू में कमीशन लेंगे, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. आप ऑलमोस्ट एक डिजिटल नेशन बना रहे हो, राइट? तो जैसे इंडिया में टैक्स से आप सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाते हो, और लोग जितना अच्छा करेंगे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी. सिमिलरली आप भी एक हम भी एक ये ज़ायनवर्स में डिजिटल नेशन बना रहे हैं, जहाँ पे ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, लोगों को इमोशनली, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, क्रिएटिवली, इवेंचुअली स्पिरिचुअली भी अच्छा लगेगा. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज ड्राइव्स मी, एंड दैट इज व्हाट इज द थिंग दैट हैज बीन ड्राइविंग मी फॉर द लास्ट 5 years इन दिस जर्नी.
सो द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड व्हिच इज मोर इमर्सिव एंड स्टैंड्स अ सर्टेन वैल्यू इज व्हाट ड्राइव्स यू अ लॉट.
First is the idea of just creating what you think. Like, there is no bigger high for me than imagining something in my head and then working with my team to actually see it being created. Right? Mm. Wo mere khayal se har ek koi bhi creator ya artist ho, wo uski dream hai ki thought ko actually tangible bana diya. Humne socha ki yaar ye aise app ban sakta hai, ye aise product ban sakta hai, log isko aise karenge, wo dikh raha hote hue.
Yeah.
It is, matlab, there is no other high, I think, that yeah, I can get. This is
absolutely
a great. मतलब सबसे बड़ी किक.
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली.
एंड देन वेब 3 वर्ल्ड एंड मेटावर्स इज अ यू नो आइसिंग ऑन द केक कि मतलब इस एरिया इज सो इंटरेस्टिंग. आई एम सेइंग कि अगर ये वेब 3 वगैरह नहीं होता, उससे पहले भी हम एप्स वगैरह बना रहे थे, बिजनेसेस बना रहे थे, बिकॉज क्रिएशन वॉज द कोर विच वॉज ड्राइविंग दैट पैशन.
इट्स इंटेंस. आई वांट टू एंड दिस विद अ पर्सनल कोट व्हिच आई बिलीव इन कि व्हेन एवरी टाइम पीपल यूज्ड टू आस्क मी कि व्हाट डू यू वांट टू डू. What do you want to do? And I used to say, I'm figuring out.
Hmm.
I don't know. But even then, I'm figuring out. One day in my life, I want to sit back and look at something I've created and say, I thought about it once. It's here now.
Right. Yeah.
And that's what I think is driving you. Yeah, that's ultimate goal for
correct.
Everyone.
Correct.
Thank you so much for doing this, man.
Thank you so much.
This is great insights. I love your insights on a lot of things. I see that passion and I'm going to still think about discovery, invention, US, India, Shakti tokens, and a lot to consume. There's a lot of things in my head right now. I have to rewatch this at least 2 times to take that all in into 2 different parts. But thanks for doing this. I love it.
Thank you so much for having me here.